एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक बहुत ही असाधारण किताब की बात करेंगे और उसकी लेखिका के जीवन में भी उतरेंगे।
हाँ, किताब है एजुकेटेड
और शख्सियत है तारा वेस्टओवर। मतलब उनकी कहानी सुन के अविश्वसनीय सी लगती है ना?
बिल्कुल। सोचिए, एक लड़की जो 17 साल की होने तक न कभी स्कूल गई, न जिसका कोई जन्म प्रमाण पत्र था,
हाँ।
और जिसे ये तक नहीं पता था कि यूरोप में कभी होलोकॉस्ट जैसा कुछ हुआ भी था।
सोचिए जरा।
और वही लड़की, आप देखिए, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी जगहों तक पहुंचती है, इतिहास में पीएचडी करती है। ये सफर ही अपने आप में चौंकाने वाला है।
और ये सिर्फ अकादमिक सफलता की कहानी नहीं है। जैसा आपने कहा, हम आज तारा वेस्टओवर की किताब एजुकेटेड के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो इडाहो का एक अलग थलग माहौल था।
बिल्कुल, वो कट्टरपंथी सर्वाइवलिस्ट परिवार।
हाँ, वहां से निकलकर ज्ञान और आत्मखोज की दुनिया तक पहुंचना, ये कैसा होता है?
ये किताब असल में हमें परिवार के प्रति जो वफादारी होती है और अपनी पहचान बनाने की जो इच्छा होती है, उसके बीच के गहरे तनाव में ले जाती है। वो जो विरासत में मिली सोच है और जो अपनी समझ बन रही है, उसका संघर्ष दिखाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि भाई सच क्या है, ज्ञान पाने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है।
और खुद को पाने के लिए इंसान क्या कुछ छोड़ने को तैयार हो सकता है? गहरे सवाल हैं।
बिल्कुल।
तो चलिए तारा की दुनिया में चलते हैं। वो इडाहो का बक्स पीक पहाड़, एक मोर्मन परिवार जो मुख्यधारा समाज से बिल्कुल कटा हुआ, सरकार पर, आधुनिक चिकित्सा पर शक करने वाला, कैसा रहा होगा वो माहौल?
माहौल बहुत ही अलग थलग था। पिता, मतलब किताब में एक जीन कहा गया है, वो थे तो करिश्माई लेकिन साथ ही बेहद कट्टर और शायद मानसिक रूप से थोड़े अस्थिर भी।
हाँ, वो सर्वाइवलिस्ट वाली सोच।
बिल्कुल, उनका मानना था कि भाई सरकारी स्कूल तो ब्रेन वॉश करते हैं डॉक्टर, वो तो जहर देते हैं और दुनिया तो बस कभी भी खत्म हो सकती है।
तो ये तैयार रहना है हमेशा।
हाँ, इसीलिए इसी सोच के चलते बच्चों का ना कोई बर्थ सर्टिफिकेट बना, ना वो कभी स्कूल गए।
और माँ, जिनका नाम फे बताया गया है किताब में,
जी,
वो इस सब में कैसे फिट होती थी?
माँ वो जड़ी बूटियों से इलाज करने वाली और दाई का काम करने वाली महिला थी। वो धीरे धीरे पति की विचारधारा में ढल गईं, शायद अपनी सुरक्षा के लिए या हो सकता है विश्वास के कारण भी। तो घर पर शिक्षा का मतलब था मॉर्मन धर्मग्रंथ और पिता के जो भी सिद्धांत थे। असली पढ़ाई तो होती थी पिता के कबाड़ खाने में।
जहाँ बहुत खतरा था।
हाँ, खतरनाक काम करते हुए, सुरक्षा नियमों का तो कोई मतलब ही नहीं था वहाँ। गंभीर चोटें लगना बहुत आम बात थी।
यानी दुनिया का एक बहुत ही सीमित और कहना चाहिए खतरनाक नजरिया उन्हें बचपन में मिला, लेकिन फिर भी पढ़ने की इच्छा कहीं से तो जगी।
हाँ, ये दिलचस्प है। मतलब बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटे होने के बावजूद तारा ने खुद से पढ़ना सीखा। इसमें उनके एक बड़े भाई टाइलर, उनकी भूमिका काफी अहम थी।
अच्छा।
हाँ, टाइलर चुपके चुपके पढ़ते थे और उन्होंने ही तारा को गणित और व्याकरण की थोड़ी बहुत शुरुआती जानकारी दी। वो पहले थे उस परिवार में जिन्होंने उस बंद दुनिया से बाहर निकलकर कॉलेज जाने की हिम्मत की।
और टाइलर का बाहर निकलना ही तारा के लिए एक तरह से प्रेरणा बन गया।
बिल्कुल, एक तो टाइलर का जाना और दूसरा घर में भाई शॉन की हिंसा, वो बढ़ती जा रही थी, तो उससे बचने की इच्छा ने भी तारा को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने पिता के इतने विरोध के बावजूद छिपकर ACT यानी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू की।
ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं थी फिर तो?
नहीं, ये उस पूरी विचारधारा के खिलाफ एक तरह का विद्रोह था जिसमें वो पली बड़ी थी।
और फिर 17 साल की उम्र में ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी BYU पहुंचना, ये तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रखने जैसा हुआ होगा।
एक सांस्कृतिक भूकंप समझिए, क्लासरूम, लोगों का मिलना जुलना, सामान्य सामाजिक शिष्टाचार, इतिहास की वो बातें जो बाकियों के लिए बिल्कुल आम थीं,
जैसे
होलोकॉस्ट या अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। तारा के लिए ये सब अनसुना था, अनजाना था। उन्हें पहली बार शायद एहसास हुआ कि दुनिया उनके पिता की बताई कहानियों से कितनी कितनी अलग है।
इस अज्ञान का सामना करना कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए?
बेहद शर्मिंदगी भरा, जैसे उन्होंने खुद बताया है, वो होलोकॉस्ट वाली घटना जब क्लास में पूछने पर एकदम सन्नाटा छा गया।
हाँ।
लेकिन यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। उनमें सीखने की एक जबरदस्त भूख जगी। उन्होंने इतिहास, दर्शन, राजनीति सब पढ़ना शुरू किया और वो जो हम कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग,
आलोचनात्मक सोच,
हाँ वो विकसित होने लगी। मतलब सिर्फ मान लेने के बजाय सवाल करना, सबूत देखना, अलग अलग नजरियों को समझना।
और शायद यहीं पर उन्हें फेमिनिज्म या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे शब्द भी पहली बार सुनने को मिले होंगे।
बिल्कुल, और ये सिर्फ एकेडमिक शब्द नहीं थे उनके लिए। इन विचारों ने उन्हें अपने ही परिवार को समझने का एक नया फ्रेमवर्क दिया, एक नया नजरिया।
जैसे पिता का व्यवहार भाई का,
हाँ पिता का वो जो अत्यधिक संदेह करने वाला और अजीब सा व्यवहार था, भाई शॉन का हिंसक और बिल्कुल अप्रत्याशित रवैया, इन्हें अब वो सिर्फ पागलपन या बुरा कहकर खारिज नहीं कर सकती थी। अब वो इन्हें मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा के नजरिए से देखने की कोशिश करने लगी।
ये समझ यकीनन दर्दनाक रही होगी।
दर्दनाक थी, पर जरूरी भी थी शायद उनके लिए।
और फिर एकेडमिक सफर तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, BYU से कैम्ब्रिज, फिर हार्वर्ड, ये कैसे संभव हुआ?
देखिए, प्रतिभा तो थी ही उनमें और साथ में असाधारण मेहनत। BYU में कुछ प्रोफेसर्स ने उनकी क्षमता पहचानी, उन्हें गाइड किया, फिर उन्हें कैम्ब्रिज के लिए वो प्रतिष्ठित गेट स्कॉलरशिप मिली जहां उन्होंने MPhil किया। उसके बाद हार्वर्ड में विजिटिंग फेलो बनी और फिर वापस कैम्ब्रिज से इतिहास में PhD पूरी की।
कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में भी क्या उन्हें अपनी पृष्ठभूमि के कारण कुछ संघर्ष करना पड़ा?
शुरुआत में जरूर, उनको खुद ऐसा लगता था कि उनका अतीत, उनकी आवाज, ये सब उनकी कमजोरी है। लेकिन वहां उन्हें प्रोफेसर जोनाथन स्टाइनबर्ग जैसे मेंटर्स मिले।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने उन्हें समझाया कि उनका ये जो अनोखा नजरिया है, ये असल में उनकी कमजोरी नहीं, उनकी ताकत है। क्योंकि उन्होंने इतिहास को सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ा था, बल्कि अनुभव के एक बिल्कुल अलग, एकदम अनूठे छोर से देखा था।
और फिर 2018 में आई एजुकेटेड, किताब छपते ही दुनिया भर में बेस्टसेलर बन गई, अनगिनत पुरस्कार जीते।
हाँ, और तारा वेस्टोवर सिर्फ एक लेखिका नहीं रही, वो शिक्षा की जो परिवर्तनकारी शक्ति है, पारिवारिक रिश्तों की जो जटिलताएं हैं और व्यक्तिगत विकास का जो संघर्ष है, इन सब पर एक बेहद महत्वपूर्ण आवाज बन गई।
और आज भी वो सक्रिय है।
बिल्कुल, आज वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में सीनियर रिसर्च फेलो है और अपनी कहानी के जरिए अकेडमिक दुनिया और आम पाठकों के बीच एक पुल का काम कर रही है।
तो अगर हम तारा के जीवन और उनके लेखन से उनके मूल दर्शन को, उनके कोर बिलीफ को समझना चाहें, तो वो क्या होगा, क्या चीज थी जो उन्हें चलाती रही?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा विश्वास तो उनका शिक्षा की ताकत में है। लेकिन उनके लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री लेना या जानकारी जमा करना भर नहीं है।
हाँ, वो उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है।
बिल्कुल, ये एक तरह से आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। ये दुनिया को और खुद को देखने का नजरिया मौलिक रूप से बदलने की प्रक्रिया है। उन्होंने खुद भी कहा है कि शिक्षा पाना एक तरह से पुराने स्व का मर जाना है और एक नए स्व का जन्म लेना है।
यह तो काफी काफी गहरा विचार है। मतलब ज्ञान आपको सचमुच बदल देता है, आप पहले जैसे रह ही नहीं सकते।
हाँ, और ये बदलाव अक्सर आसान नहीं होता। यह आपको उन लोगों से दूर कर सकता है जिन्हें आप शायद बहुत प्यार करते हैं, उन विश्वासों से तोड़ सकता है जिनके सहारे आप तक जिए हैं। तारा की कहानी ये दिखाती है कि ज्ञान मुक्तिदायक है, पर उसकी कीमत भी है।
महंगा सौदा है।
हाँ,
सत्य के बारे में उनके क्या विचार हैं? क्योंकि बचपन में तो उन्हें एक तरह का पूर्ण सत्य बताया गया था।
हाँ, पिता वाला सत्य।
और फिर बाहर की दुनिया में शायद वो सब कुछ सापेक्ष है वाला विचार मिला होगा।
उन्होंने इन दोनों छोरों को खारिज किया है। ना तो वो अपने पिता के उस कट्टर अपरिवर्तनीय सत्य को मानती हैं, और ना ही वो इस विचार को कि हर किसी का सच बराबर होता है, जिसे रिलेटिविज्म कहते हैं।
तो फिर क्या है सच उनके लिए?
उनके लिए सत्य की खोज एक निरंतर चलने वाली काफी कठिन प्रक्रिया है। इसमें बौद्धिक ईमानदारी चाहिए, सबूतों की पड़ताल करनी होती है, अपने पूर्वाग्रहों को लगातार चुनौती देनी पड़ती है, और हाँ, ज्ञान की भावनात्मक कीमत चुकाने की तैयारी भी इसमें शामिल है।
और प्रेरणा, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद वो चलती रही, क्या वजह थी?
एक तो शायद दुनिया को समझने की एक तीव्र, कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा। दूसरा, आत्मनिर्णय की चाह, मतलब अपनी कहानी खुद लिखने की इच्छा, न कि किसी और की लिखी कहानी को जीने की मजबूरी। और तीसरा, मुझे लगता है अपने अनुभवों को, उन बिखरे हुए दर्दनाक अनुभवों को एक अर्थ देने की जरूरत। शायद लिखना इसी प्रक्रिया का हिस्सा था उनके लिए, अपने अतीत को एक सूत्र में पिरोकर समझना और फिर दुनिया को समझाना।
किसी भी जीवन यात्रा में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। तारा के जीवन में ऐसे कौन से 3 सबसे अहम मोड़ आप देखती हैं?
पहला तो निश्चित रूप से वो ACT परीक्षा देने का फैसला था।
हाँ सर।
सोचिए, 16 साल की उम्र है, घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है, भाई शॉन की हिंसा बढ़ रही है,
टायलर जा चुका है,
हाँ बड़ा भाई टायलर कॉलेज जा चुका है, तो एक उम्मीद की किरण दिख रही है। इस पृष्ठभूमि में पिता के इतने सख्त विरोध के खिलाफ जाकर छिपकर परीक्षा की तैयारी करना, ये सिर्फ कॉलेज जाने का रास्ता ढूंढना नहीं था,
एक तरह का पहला बड़ा विद्रोह था उनके जीवन का।
परीक्षा पास की और BYU में एडमिशन मिल गया तो ये इस बात का सबूत था कि वो सिर्फ अपने परिवार की बनाई हुई दुनिया का हिस्सा नहीं है, उनमें कुछ और बनने की क्षमता है। ये वो पल था जब वो शिकार होने की मानसिकता से निकलकर कर्ता यानी एजेंट बनी। इसने एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा खोला उनके लिए।
दूसरा मोड़ मेरे ख्याल से वो BYU की क्लास वाला ही होगा, होलोकॉस्ट वाला वाक्या।
बिल्कुल, वो सार्वजनिक शर्मिंदगी का क्षण जब पूरी क्लास के सामने उनकी अज्ञानता उजागर हुई कि वो कितना कुछ नहीं जानती। ये बेहद तकलीफ दे था, लेकिन इसने एक चिंगारी को आग में बदल दिया।
अच्छा, कैसे?
उन्हें शिद्दत से एहसास हुआ कि वो कितना कुछ नहीं जानती, और ये न जानना सिर्फ जानकारी की कमी नहीं बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी भयानक सच्चाई से अनजान होना है। इस घटना ने ज्ञान की प्यास को और तेज कर दिया। अब शिक्षा सिर्फ उस माहौल से भागने का रास्ता नहीं थी,
बल्कि
एक जिम्मेदार और जागरूक इंसान बनने के लिए जरूरी हो गई, एक अनिवार्य घटक बन गई।
और तीसरा मोड़ ये कौन सा था?
वो शायद सबसे व्यक्तिगत और सबसे ज्यादा दर्दनाक था, जब उन्होंने सालों बाद अपनी बहन ऑड्री के साथ मिलकर भाई शॉन के दुर्व्यवहार का सामना करने का फैसला किया और ऑड्री आखिरी वक्त पर मुकर गई।
जबकि ऑड्री ने भी तो शॉन के आंतों दुर्व्यवहार सहा था, जैसा तारा बताती हैं।
हाँ, किताब के अनुसार दोनों ने एक दूसरे को अपनी कहानियां बताई थी और मिलकर माता पिता से बात करने का फैसला किया था, लेकिन परिवार के दबाव में ऑड्री ने न सिर्फ अपनी बात वापस ले ली बल्कि तारा को ही झूठा बता दिया, बुरी आत्माओं से प्रभावित तक कह दिया।
ओह, ये तो बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ।
विश्वासघात का चरम था ये। इसने तारा के सामने एक कड़वी सच्चाई खोल दी कि उनके परिवार के लिए वो जो व्यवस्था बनी हुई थी, जो गढ़ी हुई कहानी थी, उसको बचाना ज्यादा जरूरी था, सच्चाई से भी ज्यादा और तारा की सलामती से भी ज्यादा।
इसने उन्हें फिर क्या करने पर मजबूर किया?
इसने उन्हें एक अंतिम चुनाव करने पर मजबूर किया। या तो परिवार की उस झूठी कहानी का हिस्सा बनकर रहो चुपचाप, या फिर सच बोलो और अकेले रह जाओ।
और उन्होंने सच चुना?
उन्होंने सच चुना, जिससे परिवार से रिश्ता लगभग टूट गया। ये बेहद दर्दनाक था, लेकिन इसी अलगाव ने उन्हें पूरी तरह से अपनी पहचान बनाने और अपना सच कहने की आज़ादी दी। ये एक तरह से आत्म पुनर्प्राप्ति, सेल्फ रेक्लेमेशन का मोड़ था।
तारा की कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही सार्वभौमिक भी लगती है। इसमें ऐसे कौन से सबक हैं जिनसे हम सभी शायद जुड़ सकते हैं?
सबसे पहला तो यही कि सच्ची शिक्षा सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है बल्कि दुनिया को देखने का नज़रिया बदलना है। यह आपको सवाल करना सिखाती है, आपकी अपनी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देना सिखाती है, और ये बदलाव अक्सर भीतर से होता है, गहरा होता है।
और परिवार वाला पहलू, हम सब कहीं ना कहीं अपने परिवार से, उनकी उम्मीदों से, उनके प्यार से बंधे होते हैं।
बिल्कुल, और ये कहानी दिखाती है कि कभी कभी पारिवारिक वफादारी और आपका अपना व्यक्तिगत विकास, ये आमने सामने आ जाते हैं, टकराव होता है।
हाँ।
और ऐसे में खुद को चुनना, अपनी सच्चाई को चुनना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है, लेकिन कभी कभी जरूरी भी होता है। उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, हाँ, लेकिन आत्मसम्मान और अपनी पहचान शायद इसी चुनाव से बनती है।
ये ज्ञान के बोझ की भी बात करती है ना, कि एक बार जब आप जान जाते हैं तो फिर अनजान होने का नाटक नहीं कर सकते।
सही कहा।
समझने के साथ जिम्मेदारी आती है। जब आप चीजों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं तो आप चुप नहीं रह सकते या पहले की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। ज्ञान आपको आजाद करता है, लेकिन हाँ, एक जिम्मेदारी का बोझ भी डालता है।
और लचीलापन, रेजिलियंस, वो तो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। इतनी कठिनाइयों के बाद भी खड़े रहना, आगे बढ़ते जाना, हाँ। और ये दिखाती है कि लचीलापन कोई जादुई गुण नहीं है जो बस कुछ लोगों में होता है, कुछ में नहीं। ये एक ऐसा कौशल है जो मुश्किल हालात का सामना करने से, मदद लेने से, जैसे तारा को मेंटर्स से मिली, और हार न मानने से धीरे धीरे विकसित होता है। तारा की यात्रा दिखाती है कि इंसान भयानक ट्रॉमा से गुजरकर भी अपनी कहानी को बदल सकता है।
मुझे लगता है कई लोग इन संघर्षों से जुड़ सकते हैं, चाहे वो अपनी किसी पुरानी सीमित सोच पर सवाल उठाना हो, या मुश्किल पारिवारिक रिश्तों को निभाना हो, या फिर बस ज्ञान की तलाश में निकलना हो।
निश्चित रूप से ये कहानी हमें याद दिलाती है कि बदलाव संभव है, चाहे शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे।
तो अगर हमें इस पूरी गहन चर्चा को 3 मुख्य निष्कर्षों में समेटना हो तो वो क्या होंगे?
पहली सीख जो मुझे लगता है भावनात्मक है, वो ये कि आप किसी से बेहद प्यार कर सकते हैं और फिर भी उन्हें अलविदा कहना चुन सकते हैं। आप हर रोज किसी की कमी महसूस कर सकते हैं और फिर भी इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि वो अब आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये परिवार से अलगाव के उस जटिल, दुखद लेकिन कभी कभी आत्मसंरक्षण के लिए जरूरी परिपक्व फैसले को दर्शाता है।
दूसरी सीख
जो बौद्धिक है वो ये कि आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ एक अकादमिक शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है जिसे लगातार विकसित करना होता है। इसमें सिर्फ दूसरों की कही बातों पर नहीं बल्कि खुद की मान्यताओं पर भी सवाल उठाना शामिल है। सबूतों की जांच करना और नई जानकारी के लिए दिमाग खुला रखना, भले ही वो जानकारी आपके पुराने आरामदेह विश्वासों को चुनौती देती हो। तारा का सफर दिखाता है कि कैसे इंसान बिना सवाल किए मानने से लेकर एक प्रशिक्षित इतिहासकार की तरह विश्लेषण करने तक पहुंच सकता है।
बिल्कुल। और तीसरी एक सार्वभौमिक सीख।
और तीसरी सीख जो सार्वभौमिक है वो ये कि आपकी जड़ें या आपकी शुरुआत वो आपका मुकद्दर तय नहीं करती। आपका स्व द सेल्फ कोई ऐसी स्थिर चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये वो चीज है जिसे आप बनाते हैं अपने चुनावों से, अपने शिक्षा से, अपने संघर्षों से। तारा वेस्टोवर की कहानी इस बात का एक बहुत सशक्त प्रमाण है कि इंसान में खुद को बदलने और एक नया जीवन गढ़ने की अपार क्षमता है, भले ही इसके लिए उसे अकेले ही क्यों न शुरुआत करनी पड़े।
ये वाकई बहुत प्रेरणादायक निष्कर्ष हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है। जैसा आपने पहले भी इशारा किया, अगर ज्ञान की कीमत अपने अतीत और अपनों से दूरी बनाना है तो क्या हर कोई ये कीमत चुकाने को तैयार होगा या चुकाना चाहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को कभी ना कभी सोचना पड़ता है।
हाँ, ये व्यक्तिगत चुनाव का सवाल है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।